नमस्कार भारत, 3 मई दिन मंगलवार, मैं हूं संदीप सोनी। हुर्रियत नेताओं के प्रति भारत सरकार की नीति में बड़ा बदलाव, पाकिस्तान के अधिकारियों से मिल सकेंगे हुर्रियत के नेता।
भाई चूंकि मसला हमारा है तो हम प्राइमरी पार्टी हैं, इस लिहाज से ये अकल का भी तकाजा है और इंसाफ का भी कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बात करेंगे तो उनको कश्मीरियों को साथ लेके चलना होगा।
भारत की नागरिकता नहीं मिली लेकिन नाम मतदाता सूची में, सरकारी कैंपों में फंसे बांग्लादेशियों को नागरिकता का इंतजार।
পুনর্বাসন দেওয়া কথা, পুনর্বাসনের কিছুই নেই, এখা নাই আসিয়ে দেখি এখা কিছুই নেই, এলাও কিছু পাই নেই, এমনি খালি ভোট নিয়ে ব্যস্ত, ভোট নিয়ে ব্যস্ত আমরা মনে করো বাড়ি ঘর।
उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी, होंगी और भी खबरें, समाचार पत्रों की सुर्खियां भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। भारत प्रशासित कश्मीर के अलगाववादियों ने केंद्र सरकार के उस ऐलान का स्वागत किया है जिसमें जानकारी दी गई है कि सरकार को भारतीय नागरिकों के किसी भी दूतावास में जाने पर कोई एतराज नहीं है। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने बीते हफ्ते संसद में जानकारी दी थी कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है, ऐसे में कश्मीरी भारतीय नागरिक हैं और किसी भी भारतीय नागरिक के दिल्ली में किसी भी दूतावास में जाने या फिर किसी भी राजदूत से मिलने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। तुर्की की संसद में सत्ताधारी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी और विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच जोरदार संघर्ष हुआ। दोनों तरफ के सदस्यों ने एक दूसरे पर लात घूंसे चलाए और पानी फेंका। यह हंगामा सांसदों को उन पर मुकदमा चलाने से मिली छूट हटाने से जुड़े विधेयक पर चर्चा के दौरान हुआ। संविधान संशोधन की सिफारिश सरकार की तरफ से की गई थी जिसे संसदीय आयोग ने मंजूरी दे दी। विपक्ष का कहना है कि इस बदलाव का मकसद असहमति पर रोक लगाना है। चर्चा के दौरान हुए संघर्ष में कई सांसद घायल हो गए। खगोल वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने 3 ऐसे ग्रह खोजे हैं जिनका वातावरण धरती के सौर मंडल की तरह है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इन 3 ग्रहों पर जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं। 39 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित ये 3 ग्रह आकार में पृथ्वी और शुक्र ग्रह के बराबर हैं। शोध करने वाले दल के प्रमुख और बेल्जियम की यूनिवर्सिटी ऑफ लीज के माइकल गिलेन कहते हैं,
They are irradiated in the same level, more or less, than Venus, Earth, and Mars. So this means that they could have liquid water.
ये ग्रह शुक्र, पृथ्वी और मंगल के स्तर पर हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी सतह पर पानी तरल अवस्था में हो सकता है और जीवन की संभावनाएं भी हैं। हम इन ग्रहों पर जीवन की तलाश का अध्ययन अभी से कर सकते हैं। ये थे माइकल गिलेन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। यूरोपियन कमीशन के बुधवार को तुर्की और यूरोपीय यूनियन के शेंजेन इलाके में वीजा मुक्त आवाजाही को सशर्त मंजूरी देने की संभावना है। कमीशन से जुड़े सूत्रों ने बीबीसी को इसकी जानकारी दी है। ऐसा तुर्की के साथ हुए उस समझौते के तहत किया जाएगा जिसमें उसे ग्रीस पहुंचे प्रवासियों को वापस लेना है, लेकिन इसके लिए तुर्की को यूरोपीय यूनियन की ओर से तय कसौटी पर खरा उतरना होगा। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निष्पक्ष न्याय प्रणाली और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करना शामिल है। ब्राजील के अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से विपक्षी नेता एसियो नेवेस के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच शुरू करने की अनुमति देने को कहा है। नेवेस पर सरकारी बिजली कंपनी फरनास से रिश्वत लेने का आरोप है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर और अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव। केंद्र सरकार को इस बात का एहसास हो गया है कि सियासत या कूटनीति में लाल लकीरें नहीं खींची जाती। ये बयान है भारत प्रशासित कश्मीर के पृथकतावादी हुर्रियत नेताओं का, जो भारतीय विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह के बयान के बाद आया है। वीके सिंह के बयान को हुर्रियत नेताओं के प्रति भारत सरकार की नीति में परिवर्तन के तौर पर देखा जा रहा है। क्या कहा था वीके सिंह ने और हुर्रियत ने किन शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दी है, सुनिए श्रीनगर से रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
दो दिन पहले उप विदेश मंत्री वीके सिंह के एक लिखित जवाब में संसद में बताया गया कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है, इसलिए कश्मीरी भारतीय नागरिक हैं और किसी भी भारतीय के दिल्ली में किसी भी दूतावास में जाने या किसी भी राजदूत से मिलने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी। इस घोषणा का इशारा साफ साफ पिछले वर्ष अगस्त की उस विवादित भेंटवार्ता की तरफ था जिसमें कश्मीरी अलगाववादी पाकिस्तानी राजदूत अब्दुल बासित से मिले थे। इस मुलाकात को बहाना बनाकर भारत ने विदेश सचिवों की तयशुदा बातचीत को स्थगित किया था। कश्मीर में दोतरफा बातचीत के समर्थक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गुट के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक ने सरकार की इस घोषणा की प्रशंसा की है
और मैं कहूंगा शायद उसी पॉलिसी को फिर से हम तवक्का रखते हैं कि रिविजिट किया जाएगा जो पॉलिसी उन्हीं के साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने जो अडॉप्ट की थी।
मीरवाइज का कहना है कि कश्मीर समस्या को लेकर भारत और पाकिस्तान जो भी बात करेंगे इसमें कश्मीरियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
हमने हमेशा कहा कि भाई चूंकि मसला हमारा है तो हम प्राइमरी पार्टी हैं, तो इसलिए इस लिहाज से ये अक्ल का भी तकाजा है और मैं कहूँगा कि इंसाफ का भी कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बात करेंगे तो उनको जो है कश्मीरियों को साथ लेके चलना होगा।
गौरतलब है पूर्व आर्मी चीफ और बीजेपी के नेता वीके सिंह ने यह घोषणा करते हुए साफ कर दिया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत में किसी तीसरी पार्टी की भूमिका नहीं होगी। पिछले सप्ताह भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों ने करीब एक वर्ष के विलंब के बाद मुलाकात की लेकिन आतंकवाद को लेकर दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। दिल्ली और इस्लामाबाद के साथ अलग अलग स्तरों पर बातचीत करने के मामले पर कश्मीर के अलगाववादी दो गुटों में बटे हुए हैं। मीरवाइज ग्रुप ने मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी सरकारों के साथ कई बार वार्तालाप किया लेकिन सईद अली गिलानी की अध्यक्षता वाली हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ऐसी बातचीत का समर्थन नहीं करती है। मिस्टर गिलानी सेना को बारकू में वापस बुलाने और कैदियों को रिहा करने जैसी मांगों के साथ कहते हैं कि भारत पाकिस्तान और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एक ही मेज पर बात करें तो वो बातचीत में भाग लेंगे। रियाज मसरूर, बीबीसी श्रीनगर।
जम्मू कश्मीर के बाद बात उत्तराखंड की, जहां जंगलों में लगी आग पहले के मुकाबले थोड़ी ठंडी पड़ी है लेकिन पूरी तरह से काबू में अभी तक नहीं आई है। पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के जंगलों में भी कुछ जगहों पर आग लगी है जिसे उत्तराखंड की तुलना में मामूली बताया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड की आग राज्य की सियासत को भी गर्मा रही है। देहरादून से शिव जोशी की रिपोर्ट।
आग बुझाने के अभियान के दौरान उत्तराखंड के जंगलों में किसी बचाव कर्मी की मौत की यह पहली घटना है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड पुलिस का 26 साल का सिपाही पंकज चौहान चमोली कस्बे के पास एक गांव में आग बुझाने वाली टीम में शामिल था। आग बुझाने के दौरान पहाड़ी से छिटके पत्थर की चपेट में आने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। इलाज के लिए उसे जिला मुख्यालय गोपेश्वर ले जाया गया जहाँ इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। प्रशासन ने सिपाही के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा और एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। इस बीच आग बुझाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है लेकिन इसमें मौसम और धुआं रोड़े भी अटका रहा है। धुआं पहाड़ियों में फैल रहा है और कई जगह लोगों का रोजमर्रा का जीवन भी संकट में आ गया है। टिहरी जिले के कोटगांव के ओम जोशी कहते हैं,
आग बुझाने गए धुआं से हमारा सांस भी बढ़ता है, जमीन की फसल भी जलने में आ गई, चैन पशु के लिए घास नहीं है, पत्ती नहीं है, पानी भी आजकल बिल्कुल वो हो रखा है, पानी का बिल्कुल परेशानी हो रही है। पेड़ भी हमारे जो जितने फलदार पेड़ हैं किसी पे फल ही नहीं आए, गर्मी आ गए आए भी तो झड़ गए हैं, सब खत्म हो गए।
एक ओर भीषण दावाग्नि है तो दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों में शब्द बाण छोड़े जा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने जनवरी से ही सही और मुकम्मल इंतजाम किए होते तो आज ये नौबत न आती। उधर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। उनका आरोप है कि आग के आपदा प्रबंधन में प्रशासन कॉमन सेंस यानी सहज बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है।
आप गांव को तो इन्वॉल्व ही नहीं करते, आप बीट लेवल पर मैनेजमेंट है ही नहीं आप, और आपने इतनी लेट पैसा वैसा दिया, सारा अप्रैल आपने गुजर जाने दिया, जब आग चरम पर पहुंच गई तब जो है आपको ठीक है।
इस बीच उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव एस रामास्वामी ने दावा किया है कि राज्य में एक्टिव फायर यानी सक्रिय अग्नि की संख्या में कमी आई है। विभिन्न विभागों के लगभग 10,000 से अधिक लोगों को वनाग्नि को रोकने के काम में लगाया गया है। इस बार फायर वॉचर्स की संख्या को 3,000 से बढ़ाकर 6,000 कर दिया गया है। रामास्वामी ने बताया कि जंगलों में जानबूझकर आग लगाते हुए पाए जाने पर कुल 46 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें एक मामले में FIR और 45 में फॉरेस्ट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इनमें से 2 व्यक्तियों को नैनीताल में और 1 व्यक्ति को पिथौरागढ़ में गिरफ्तार किया गया। मौसम और धुएं की मुश्किलों के बीच वायुसेना के हेलीकॉप्टर पानी का छिड़काव प्रभावित इलाकों पर कर रहे हैं। आज उनके अभियान का 3रा दिन होगा। शिव जोशी, BBC, देहरादून।
जंगल में जब आग लगती है तो न केवल पेड़ पौधे जलते हैं, बल्कि पूरा पर्यावरण, पूरा पारिस्थितिकी तंत्र एक तरह से झुलसने लगता है, जिसका असर इंसानों के अलावा जंगल, जमीन, पानी, हवा, जंगली जानवर, कीट पतंगे, परिंदों पर भी पड़ता है। ये एक पूरी कड़ी, पूरी श्रृंखला के टूटने बिखरने जैसा होता है। इतिहास के प्रोफेसर रहे शेखर पाठक लंबे समय से हिमालय, जंगल, पर्यावरण और खासतौर पर उत्तराखंड पर काम करते रहे हैं। हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने शेखर पाठक से बात करके आग की वजह से हुए नुकसान को समझने की कोशिश की।
मुश्किल ये है कि जो औपनिवेशिक काल से जो जंगल में आग लगने के बाद जो हानि को निकालने का तरीका है वो बड़ा गड़बड़ है। एक खास मोटाई से ज्यादा के जो तने वाले पेड़ होते हैं उनका कैलकुलेशन करके, टिम्बर लॉस का कैलकुलेशन करके हानि एक तरीके से निकाली जाती है, जो बहुत ही वाहियात और पिछड़े किस्म का एक तरीके से दृष्टिकोण है। जब जंगल में आग लगती है तो उसमें न सिर्फ जो बड़े दिखने वाले पेड़ खत्म होते हैं, बल्कि एक प्रकार से उस पूरे क्षेत्र की जो बायोडाइवर्सिटी है वो खत्म हो जाती है। पूरे इलाके के तापमान में परिवर्तन आ जाता है, जमीन की नमी में परिवर्तन आ जाता है और एक तरीके से एक पूरा इकोसिस्टम नष्ट होता है और एक गड़बड़, जिसको कहेंगे कि जलवायु का रीजन इलाका, वो बन जाता है। इसके हाथ से देखें तो ये आग जबरदस्त तरीके से आग क्षति पहुंचाने वाली रही है।
अगर समय को एक पैमाना माने तो इस नुकसान में कितने समय का धरोहर नष्ट हुआ होगा और उसको फिर से हासिल करने में हमें कितना वक्त लग जाएगा?
इसका जवाब देना तो मेरे लिए मुश्किल इस अर्थ में है कि जब आप एक इकोसिस्टम को नष्ट करते हैं तो कुछ दुर्भाग्य ऐसा है कि इसको हमारा जो नीति आयोग है और हमारी जो सरकारें हैं, वो हमारे वन विभाग या इवन हमारा समाज है, वो संवेदनशील रहता तक ही क्यों ना हो, वो भी उसकी भरपाई बहुत जल्दी नहीं कर सकता है। ये दशकों के बाद जो है रिकवर होने वाली एक तरीके से स्थिति होती है। पिछले सितंबर से जो है बारिश नहीं हुई है, बर्फ नहीं पड़ी पहाड़ों में, इतना लंबा ड्राई स्पेल यानी कि आधे साल से ज्यादा समय तक जो है बारिश न हो रही हो या बहुत कम हुई हो, सिर्फ ऊंचाइयों में बर्फ पड़ी हो और नदियां सूखने लगी हों, नैनीताल का ताल जो है 10 बार फीट नीचे चला गया हो पानी का लेवल उसका, तो फरवरी में पहली आग नजर यहाँ आ गई थी फरवरी 2016 में और सितंबर 2015 से बारिश नहीं हुई, तो हमारे पूरे सरकार को, व्यवस्था को, वन विभाग को और इन सबको समझना चाहिए ऐसा समय पर कि पहले से सावधान होना है। जंगल को आग अगर कोई लगा रहे होंगे तो फेक प्लांटेशन करने वाले जो भी एजेंसी हो, जो भी विभाग हो और जो माफिया हैं जो जंगलों से एक तरीके से अपनी पूरी आर्थिकी, अपना पूरा धंधा चलाते हैं। लेकिन अभी ये स्थिति है कि इतना लंबा ग्रीस, इतना लंबा आवर्षण और इतना अभाव पानी का, इसमें एक नेचुरल वे में भी कहीं भी आग लग सकती है।
कहा ये भी जा रहा है कि आग हर साल ही लगती है, छोटी या बड़ी, ये दलील कितनी उचित मानते हैं?
लगती तो है, लेकिन अंग्रेजों के जमाने में तमाम खामियों के बावजूद जो एक फायर लाइन खींचने की परिपाटी थी कि एक बड़े जंगल को बहुत सारे हिस्सों में बीच में एक खाली स्पेस जो पत्ता रहित पूरा कर दिया जाता था, उसके कारण होता यह था कि अगर एक बड़े जंगल के एक यूनिट 1 में आग लग गई है तो वो यूनिट 2 में नहीं जाती थी और अब आग को नियंत्रित कर देते थे। इसके लिए कोई होमवर्क नहीं हुआ, ये सावधानी पहले से बरतनी थी।
जंगल में आग ना लगे और लगे तो इतनी ना फैले, इसके लिए पहले से सावधानी रखनी चाहिए थी। ये थे शेखर पाठक, जो लंबे समय से जंगल और पर्यावरण पर काम कर रहे हैं।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 31, 25 और 19 मीटर बैंड यानी 9,835, 9,915, 11,995 और 15,510 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर।
BBC हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। आज है 3 मई, दिन मंगलवार और कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है समाचार पत्रों की सुर्खियां जानने का। वात्सल राय कई अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं।
जी संदीप, अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील विवाद का जो असर है वो अब दिखने लगा है। कम से कम द इंडियन एक्सप्रेस की लीड खबर तो ऐसा ही बताती है। इस खबर का हेडर है, गवर्नमेंट डेफर्स अगस्ता टाटा ज्वाइंट वेंचर। भारत में हेलीकॉप्टर बनाने के लिए, दरअसल मैं आपको पूरा मामला बता रहा हूँ कि अगस्ता और टाटा सन्स के बीच एक संयुक्त उपक्रम था जिसमें सरकार ने FDI बढ़ाने का फैसला लिया था। अब इस फैसले को सरकार ने मुलतवी कर दिया है। अखबार ने इस खबर के साथ, आप जैसा देख पा रहे होंगे कि पूर्व वायुसेना प्रमुख SP त्यागी की एक तस्वीर छापी है जिसमें वो CBI मुख्यालय में पहुंचे दिखाए गए हैं। CBI ने कल उनसे पूछताछ की थी और आज भी पूछताछ जारी रहेगी। द हिंदू ने त्यागी से पूछताछ की खबर को सेकंड लीड बनाया है। टाइम्स ऑफ इंडिया और दैनिक भास्कर ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। द हिंदू की जो लीड खबर है वो इटली के उस मरीन से जुड़ी है जिन पर भारत में हत्या का मुकदमा चल रहा है। खबर की हेडलाइन है, मरीन मे गो होम। टाइम्स ऑफ इंडिया की भी यही लीड खबर है। नव भारत टाइम्स ने इसे सेकंड लीड खबर बनाया है और हेडिंग दिया है, मरीन की वापसी पर भिड़े भारत और इटली। कल दिल्ली में सबसे गर्म दिन था
और अभी हम देख पा रहे हैं थोड़े से आसमान में, दिल्ली के आसमान में थोड़े से बादल छाए हुए हैं कल के मुकाबले।
जी, और उस गर्मी में, जो कल गर्मी थी उसमें दिक्कत बढ़ा दी थी डीजल टैक्सियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने जो पाबंदी लगाई है उसके विरोध में टैक्सी चालकों ने दिल्ली में कई जगह जाम लगा दिया था। नवभारत टाइम्स ने इन दोनों खबरों को मिलाकर अपनी लीड खबर बनाया है और हेडिंग दिया है, दिल्ली का भेजा फ्राई। बड़ा दिलचस्प हेडिंग है ये। टाइम्स ऑफ इंडिया ने उत्तराखंड के जंगलों में लगी जो आग है उस पर विशेषज्ञों के हवाले से बताया है कि इससे ग्लेशियर जल्दी पिघल सकते हैं। टैक्सी चालकों के जाम पर ही हिंदुस्तान ने खबर ली है और उसको लीड खबर बनाया है। अमर उजाला की भी लीड खबर यही है। साथ में एक और खबर है जिसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार डीजल टैक्सी से पाबंदी हटाने के लिए अपील कर सकती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हवाले से ये जानकारी दी गई है। दैनिक जागरण ने गर्मी की खबर को लीड स्पेस में जगह दी है और हेडिंग दिया है, मैदान तपे पहाड़ झुलसे। आपको मैं यहाँ ये भी बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली के पालम में कल 46.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था और बाकी दिल्ली में 44 डिग्री
झुलसाने वाली
गर्मी थी। खबर में विजय माल्या भी हैं जिन्हें पहले पन्ने पर जगह मिली है। विजय माल्या ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन पर बैंकों का, आप जैसा जानते हैं, 9,000 करोड़ रुपए का बकाया है और वो फिलहाल देश से बाहर हैं और संसद की एथिक्स कमेटी उनकी सदस्यता रद्द करने पर विचार कर रही थी। ज़्यादातर अखबारों ने इसे पहले पन्ने पर जगह दी है। जनसंघ के पूर्व अध्यक्ष बलराज मदोक का कल निधन हो गया, इस खबर को भी अखबारों ने जगह दी है। SBI ने होम लोन सस्ता कर दिया है, हिंदुस्तान में ये खबर पहले पन्ने पर है। दैनिक भास्कर की सेकंड लीड खबर बताती है कि 6 महीने के दौरान, यानी बीते 6 महीने के दौरान, चीनी 33% महंगी हो गई है और दाल की कीमतें 170 के पार पहुंच गई है।
शक्कर की मिठास कम हो गई
जी। भास्कर ने जेल में बंद आसाराम की एक तस्वीर प्रकाशित की है जिसमें वो व्हीलचेयर पर बैठकर कोर्ट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
बहुत शुक्रिया विस्तार से समाचार पत्रों की समीक्षा के लिए। और अब एक विशेष रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले साल भारत और बांग्लादेश के बीच ज़मीन के कुछ हिस्सों का आदान प्रदान हुआ था। उसके बाद बांग्लादेश से 961 लोग भारत आए। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार ज़िले में इन लोगों के लिए 3 सरकारी कैंप बनाए गए हैं। यहाँ रहने वाले कुछ लोग खुश हैं और कुछ को लगता है कि बांग्लादेश भला था क्योंकि उनकी दिक्कतें कम नहीं हुई हैं। BBC संवाददाता सलमान रावी की विशेष रिपोर्ट।
ये हैं 105 साल के असगर अली जो अपनी जिंदगी में पहली बार वोट डालेंगे। ये उनका सपना भी था जो अब सच होने जा रहा है। मगर लंबी बीमारी से जूझ रहे असगर अली को 5 मई का इंतजार है। इसी दिन उन्हें भारत का नागरिक होने का एहसास पहली बार होगा।
क्या बोल रहे हैं ये?
उन्होंने बोल रहा है क्योंकि इतने साल हुआ है, उन्होंने उनका 100 साल पूरा हो चुका है, अभी वोट देंगे पहली बार। पहली बार वोट देने से पहले जब ऊपर चला जाए तो गया और वोट देंगे तो बहुत ही अच्छा, ऐसे बोल रहा है।
पश्चिम बंगाल के कूच बिहार के छीट महल के लोगों में खुशी की लहर है। रह तो ये रहे हैं कई सालों से, मगर इनकी ज़मीन का हिस्सा बांग्लादेश के अधीन था। पिछले साल भारत और बांग्लादेश में इस तरह की ज़मीन का आदान प्रदान हो गया और लोगों की मुश्किलें आसान हो गईं। कूच बिहार के दीनाहाटा के रहने वाले आलमगीर भी काफ़ी उत्साहित हैं।
पहली बार वोट डालेंगे?
हाँ, बड़ी बात। पहली बार वोट डालेंगे।
उसका कोई जश्न होगा क्या? पार्टी वार्टी भी होगी गांव में, आप लोग मनाएंगे?
वो तो बाद में देखा जाएगा।
अभी वोट के डालने के टाइम में कोई पार्टी वार्टी भी मनाएंगे?
तो हो भाई। वो तो होगा,
वो तो जरूर होगा। लेकिन
तो सबके लिए खुशी की बात है।
खुशी की बात है।
आप लोग को पूछा कि बांग्लादेश जाना है या यहाँ रहना है?
हाँ, हमको पूछा। सर्वे का जो दूदस में मिलकर था तो पूछा था तुम बांग्लादेश जाओगी? नहीं नहीं जाओगे, हम बांग्लादेश नहीं जाएंगे।
क्यों?
बांग्लादेश तो गरीब आदमी है, तो काम करने का जगह कहाँ मिलेगा? हमारा जो यहाँ खेती नहीं है, तो घर का जो ठिकाना है 2-1 कट्ठा है, उसमें तो घर बनाया है। और अभी इंडिया में जाएंगे, दिल्ली राजस्थान में मजदूर करेंगे तो 200-250 रुपया मिल जाएगा, तो हमारा फैमिली चल जाएगा। और बांग्लादेश जाके हम क्या करेंगे? वहाँ तो थोड़ा सा पश्चिम बंगाल का से थोड़ा सा बड़ा है, वहाँ क्या काम है? काम तो नहीं है, फिर भूखे भूखे मर जाएंगे, इसीलिए हम यहाँ रहेंगे।
आदान प्रदान की इस संधि के बाद 961 बांग्लादेशी हैं जो अब भारत आ गए हैं। दीनाहाटा शहर से कुछ ही दूर पर सरकार ने बांग्लादेश से भारत आने वालों के लिए कैंप बनाए हैं। मगर बांग्लादेश से यहाँ आए लोग उतने खुश नहीं नजर आ रहे हैं जितना कि असगर अली और आलमगीर। ये हैं बांग्लादेश से आई पारुल, जो कह रही थी कि वो काफी तनाव में हैं क्योंकि अभी तक भारत आए इन लोगों को नागरिकता नहीं मिल पाई है। अलबत्ता इन लोगों के नाम मतदाता सूची में जरूर शामिल कर दिए गए हैं। पारुल के साथ ही कैंप में रहने वाले कृष्णा अधिकारी भी व्यवस्था से खुश नहीं है।
আমার পরিবারে 709 জন ফ্যামিলি হয়েছে একটা। যারা এখানে অপশন দিতে মানে এখান থেকে ভারত থেকে যারা বাংলাদেশে অপশন কারি গিয়েছিল।
कृष्णा अधिकारी कह रहे थे कि उनका परिवार काफी बड़ा है। वो कह रहे थे कि जो अनाज उन्हें मिलता है उसमें गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसी कैंप में भारतीय बर्मन भी रहती हैं जो अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं। भारतीय बर्मन का कहना था कि सारा सरकारी महकमा चुनाव को लेकर भिड़ा हुआ है, जबकि उनकी नागरिकता का अभी तक उन्हें प्रमाण पत्र नहीं मिला है। भारतीय बर्मन का ये भी आरोप है कि जो पुनर्वास का वादा उनसे किया गया था वो भी पूरा नहीं किया गया है। वो ये भी कह रही थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन वो दोबारा बांग्लादेश चली जाएंगी। वहीं भारत और बांग्लादेश के इन लोगों के लिए संघर्ष करने वाले दीप्तिमान सेनगुप्ता कहते हैं कि अब तक इन 3 कैंपों में से 12 लोग चोरी छुपे वापस बांग्लादेश भाग भी गए हैं।
ये 921 में 3 आदमी मारा गया, इसी बीच में ये 8 महीना कम्प्लीट हुआ है, 3 आदमी मर गया सर्दी से, 2 आदमी मर गया एक अपना बीमारी से मर गया, और 12 आदमी भाग गए अपने मतलब बांग्लादेश में, वो लोग चले गए और वो भी ब्लैक से चले गए, हल्दीबारी कैंप से। और इससे ज़्यादा बेइज्जती की बात और कुछ नहीं है, कम से कम मेरे देश के।
दीप्तिमान का ये भी कहना था कि जो भूभाग बांग्लादेश को मिला है वहाँ की सरकार ने सारी बुनियादी सुविधाओं का इंतज़ाम कर दिया है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल यहाँ के कैंपों में रहने वालों को सिर्फ अपना वोट डालकर ही दिल को दिलासा देना पड़ेगा, क्योंकि अभी इनकी नागरिकता के प्रमाण पत्र की प्रक्रिया लंबी चलने वाली है। यहाँ रहने वालों के पास सिर्फ एक ही विकल्प है, वो है इंतज़ार, और सिर्फ इंतज़ार। सलमान रावी, BBC, कूच बिहार, पश्चिम बंगाल।
और अब वो खबरें जिन पर रहेगी आज हमारी नज़र।
अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे के मामले में CBI वायुसेना के पूर्व प्रमुख SP त्यागी से आज भी पूछताछ करेगी। सुप्रीम कोर्ट में आज उत्तराखंड को लेकर सुनवाई होगी। कोर्ट में इस मामले में पिछली सुनवाई 27 अप्रैल को हुई थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन जारी रखने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट में ही आज MBBS और BDS में दाखिले के लिए अलग परीक्षाएं जारी रखने के लिए दाखिल याचिका पर भी सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश के आगरा में आज से मुगल बादशाह शाहजहां का 3 दिन का उर्स शुरू होगा। इस दौरान ताजमहल आने वाले पर्यटकों को शाहजहां और मुमताज महल की तहखाने में स्थित असली कब्रें देखने का मौका मिलेगा। पर्यटकों के लिए ये कब्र उर्स के दौरान ही खोली जाती है। इधर नई दिल्ली में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देंगे। अमिताभ बच्चन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और कंगना रनौत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। और बात IPL की करें तो आज गुजरात लायंस और दिल्ली डेयर डेविल्स का मुकाबला राजकोट में होगा।
और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कल IPL 9 में खेले गए एक रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को उसी के मैदान में 5 विकेट से मात दी। कोलकाता के सामने जीत के लिए 186 रनों का लक्ष्य था, जो उसने कप्तान गौतम गंभीर के 37 और उसके बाद यूसुफ पठान के नाबाद 60 रनों की मदद से 19.1 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले बेंगलोर ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर कप्तान विराट कोहली के 52 और KL राहुल के भी 52 रनों की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 185 रन बनाए। कोलकाता के मॉर्ने मोरकल ने 28 रन देकर 2 और पीयूष चावला ने 32 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। आज IPL में गुजरात लायंस का सामना दिल्ली डेयर डेविल्स से होगा। उधर टेनिस के कोर्ट पर मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत ही भारी उलटफेर के साथ हुई। महिला एकल वर्ग में शीर्ष वरीयता हासिल पोलैंड की एग्नियस्का रद्वांस्का, गैर वरीयता हासिल स्लोवाकिया की डोमिनिका चिबुलकोवा से 6-4, 6-7, 6-3 से हारकर पहले ही दौर में बाहर हो गई। महिला युगल वर्ग में शीर्ष वरीयता हासिल जोड़ी भारत की सानिया मिर्जा और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस दूसरे दौर में चीन ताइपे की चुनाग चिया जुंग और क्रोएशिया की दारिजा जुरर का सामना करेंगी। वहीं भारतीय वेटलिफ्टरों ने पिछले दिनों उज्बेकिस्तान के ताशकंद शहर में संपन्न हुई सीनियर एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में रियो ओलंपिक के लिए पुरुष और महिला वर्ग में एक एक कोटा हासिल किया।
कार्यक्रम के समापन से पहले हम आपको बताते चलें, भारत ने देश में निर्मित स्कॉर्पिन पनडुब्बी का समुद्री परीक्षण शुरू कर दिया है। रक्षा मामलों के जानकार उदय भास्कर से हम समझेंगे इस परीक्षण का महत्व, इसके तकनीकी पेंच। वहीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आज प्रदान किए जाएंगे। एक बढ़िया रिपोर्ट इस पर होगी अगले कार्यक्रम विश्व भारती में सुबह 8 बजे, और अभी बजने वाले हैं 7। कार्यक्रम के समापन से पहले सुनते हैं विश्व समाचार एक बार फिर वात्सल्य राय से।
BBC समाचार। भारत प्रशासित कश्मीर के अलगाववादी नेताओं ने केंद्र सरकार के उस ऐलान का स्वागत किया है, जिसमें जानकारी दी गई है कि सरकार को भारतीय नागरिकों के किसी भी दूतावास में जाने पर कोई ऐतराज नहीं है। तुर्की की संसद में सत्ताधारी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी और विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच जोरदार संघर्ष हुआ। ये तकरार सांसदों को उन पर मुकदमा चलाने से मिली छूट हटाने से जुड़े विधेयक पर चर्चा के दौरान हुई। खगोल वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने 3 ऐसे ग्रह खोजे हैं जिनका वातावरण धरती के सौर मंडल की तरह है। यूरोपियन कमीशन तुर्की और यूरोपीय यूनियन के शेंजन इलाके में वीज़ा मुक्त आवाजाही को सशर्त मंजूरी दे सकता है। कमीशन से जुड़े सूत्रों ने BBC को इसकी जानकारी दी है। ब्राज़ील के अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से विपक्षी नेता एसियो नेविस के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच शुरू करने की अनुमति देने को कहा है। ब्राज़ील में एक जज ने व्हाट्सएप पर 72 घंटे के लिए पाबंदी लगा दी। जज मार्सेल मोंतालवो ने यह फैसला फेसबुक की ओर से एक आपराधिक मामले से जुड़ी जानकारी अदालत में नहीं देने पर सुनाया। लीस्टर सिटी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग के खिताब पर कब्जा जमा लिया है। सीजन की शुरुआत में इस टीम को किसी ने खिताब का दावेदार नहीं माना था। इस टीम के बारे में माना जा रहा था कि उसे जीत के लिए 5,000 में से 1 मौके दिए गए थे। टॉटेनहम और चेल्सी के बीच मुकाबला ड्रॉ पर खत्म होने से लीस्टर सिटी टीम चैंपियन बन गई। 132 साल के इतिहास में यह क्लब पहली बार चैंपियन बना है। BBC समाचार।
इंसान के आसमान में उड़ने की तमन्ना शीर्षक से एक कहानी बीबीसी हिंदी के पहले पन्ने पर आप पढ़ सकते हैं। आज हजारों विमान, बहुत से रॉकेट और हॉट एयर बलून की मदद से लाखों लोग रोजाना आसमान की सैर करते हैं, लेकिन आप ये जानते हैं कि हमेशा ऐसा नहीं होता था। आज से 150-200 साल पहले ना विमान थे ना रॉकेट, और इनके बिना आसमान की सैर करने का ख्वाब ख्वाब ही होता। कुछ लोगों के हौसलों की वजह से यह ख्वाब आज साकार हुआ। पढ़िए विस्तार से क्या था ख्वाब, कैसे हुआ सपना साकार। फिलहाल नमस्कार भारत में इतना ही। कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे थे राजेश चौहान। ठीक एक घंटे के बाद विश्व भारती में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।